स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक पर बात करने वाले हैं।
जी।
वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की परिवार को स्वस्थ परंपराओं का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए।
हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये।
इसके कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करेंगे आज कि कैसे परिवार मतलब सिर्फ साथ रहने की जगह नहीं बल्कि एक तरह की वर्कशॉप बन सकता है।
बिल्कुल।
जहाँ अच्छी आदतें, अच्छा चरित्र, ये सब गढ़ा जाए।
बिल्कुल सही। वंदनीय माताजी का दृष्टिकोण परिवार को एक ऐसी प्रयोगशाला, एक लैब की तरह देखता है, जहाँ सब सदस्य मिलकर अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो अकेले रहने का स्वार्थ होता है ना, या जो मनमानी होती है, उसके बिल्कुल विपरीत है ये। ये सहयोग और क्या कहते हैं, अनुशासन सीखने की जगह है।
तो चलिए थोड़ा और समझते हैं। इस किताब के हिसाब से परिवार को ऐसा केंद्र बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है वंदनीय माताजी इसमें नारी की भूमिका को काफी अहम मानती हैं।
हाँ, ये बात सही है। उनका मानना है कि देखिए, ये प्रयास तो स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर ही करना होगा, तभी पूरी तरह सफल होगा। लेकिन फिर भी वो मानती हैं कि स्त्रियों में परिवार का माहौल बदलने की एक विशेष क्षमता होती है।
अच्छा।
हाँ, उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर नारी खुद को सुधारे और परिवार में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प ले ले
जी।
तो बहुत मुश्किल हालात भी सुधर सकते हैं। मतलब उनका यह दावा काफी बड़ा है कि उनके प्रयास से नरक जैसा माहौल भी स्वर्ग बन सकता है।
स्वर्ग जैसा माहौल, तो इसकी नींव कहाँ रखी जाती है? किताब में व्यवस्था शब्द पर बहुत जोर है।
जी।
क्या इसका मतलब सिर्फ साफ सफाई और चीजों को अपनी जगह रखना है या कुछ और भी है?
नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है।
जी।
व्यवस्था में सिर्फ चीजें रखना नहीं बल्कि जागरूकता, सतर्कता, कुशलता और सुरुचि संपन्नता।
सुरुचि संपन्न।
हाँ, मतलब चीजों को सलीके से, सुंदरता से रखने की समझ, ये सब शामिल है। ये केवल बाहरी नहीं, ये एक तरह का मानसिक अनुशासन भी है।
अच्छा, यानी सिर्फ चीजें ठीक से रखना ही नहीं बल्कि जीवन में एक अनुशासन लाना। और इसका साफ सफाई, स्वच्छता से क्या नाता है?
गहरा नाता है। वंदनीय माताजी कहती हैं कि आलस्य से जो चीजें बिखरी पड़ी रहती है ना, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो गंदगी ही फैलाती हैं। और इसके उलट जिसे सुरुचि कहते हैं, मतलब जिसे सलीके का शौक हो, वो साधारण चीजों से, यहाँ तक के कबाड़ से भी घर सजा सकता है।
वाह।
ये छोटी छोटी आदतों की ताकत को दिखाता है। उन्होंने कहा भी है, प्रगति का घोंसला छोटी छोटी आदतों के तिनकों से ही बुना जाता है।
ये छोटी छोटी आदतें घर के कामों में कैसे लागू होती हैं? क्या सबकी भागीदारी जरूरी है इसमें?
बिल्कुल। वंदनीय माताजी घर के कामों में, जैसे कोई चीज टूट गई तो उसकी मरम्मत करना हो या सफाई हो, उसमें सभी सदस्यों की भागीदारी को बहुत जरूरी मानती हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी खेल खेल में ही सही घरेलू कामों में शामिल करने की बात करती हैं।
अच्छा।
ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लगे और वे सहयोग करना सीखें, टीम वर्क जिसे कहते हैं।
हाँ, सही बात है। मतलब ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है।
नहीं नहीं,
इससे तो श्रम करने की आदत, सहयोग की भावना, जिम्मेदारी का एहसास, ये सब विकसित होता है। जैसे आपने कहा, घर की छोटी मोटी टूट फूट ठीक करना सीखना।
बिल्कुल।
इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है, सेल्फ रिलायंस, और पैसे बचाने की आदत भी बनती है। उनका एक कथन मुझे याद आ रहा है, जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है, उसे बहुत कुछ आता है। ये प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर है।
ये तो बहुत अच्छी बात कही।
अच्छा, घर की व्यवस्था और कामों में सहयोग के साथ साथ क्या समय के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ये एक और बहुत अहम पहलू है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और एक नियमित दिनचर्या, एक रूटीन का पालन करना। वंदनीय माताजी का साफ मानना है कि खाली दिमाग और खाली समय ये अक्सर बर्बादी की तरफ ले जाते हैं।
और ये नियम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी है ना?
निश्चित रूप से। समय की पाबंदी पूरे परिवार के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर घर के पुरुष सदस्य अनियमित हैं, देर से आते जाते हैं।
हाँ।
तो इससे स्त्रियों की पूरी दिनचर्या बिगड़ सकती है, घर में तनाव, कलेश पैदा हो सकता है। जरूरी है कि हर कोई किसी न किसी उपयोगी काम में लगा रहे, व्यस्त रहे। इससे काम तो होता ही है, समय की कीमत भी समझ आती है।
सही कहा। इन सब बातों के अलावा आजकल जैसे दिखावा और फैशन का जोर है, तो क्या रहन सहन और खर्चों के बारे में भी कोई मार्गदर्शन है किताब में?
जी बिल्कुल है। वंदनीय माताजी सादगी और मितव्ययिता पर बहुत जोर देती हैं। मितव्ययिता मतलब सोच समझकर खर्च करना। वे फैशन परस्ती, खासकर बच्चों में जो आजकल बहुत दिखती है, और फिजूल खर्ची, उससे बचने की सलाह देती हैं।
अच्छा।
हाँ, उनका कहना है कि बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उन्हें फैशनेबल बनाने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए।
इसे बचने का क्या कारण बताती हैं? क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की बात है?
नहीं, ये उससे कहीं गहरी बात है। उनका तर्क ये है कि जब फिजूल खर्ची की आदत पड़ जाती है तो इंसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कई बार गलत रास्ते पर चला जाता है।
जैसे कि?
जैसे बेईमानी, और इससे परिवार में अस्थिरता आती है। तो सादगी और मितव्ययिता न केवल आर्थिक रूप से मदद करते हैं, बल्कि वो व्यक्ति के चरित्र की सच्चाई को भी दिखाते हैं। किताब में लिखा है कि फिजूल खर्ची करने वाले पर भरोसा करना मुश्किल होता है।
ये बात तो सोचने वाली है। और आखिर में परिवार को एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के रूप में चलाने के लिए क्या सुझाव है?
साझा जिम्मेदारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वंदनीय माताजी कहती हैं कि घर के मामलों में सभी सदस्य से सलाह लेनी चाहिए। उन्हें घर की आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरी क्या स्थितियां हैं, उन सबसे अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मंत्रिमंडल एक कैबिनेट मिलकर काम करता है।
अच्छा, जैसे एक टीम की तरह।
हाँ बिल्कुल, परिवार को वैसे ही चलाना चाहिए।
और इसका फायदा क्या होता है?
देखिए, जब सदस्यों को लगता है कि उनकी राय की कदर है, उन्हें घर की असलियत पता है, तो उनमें अपनेपन की भावना, जिम्मेदारी का भाव, वो अपने आप मजबूत होता है। वे समझते हैं कि परिवार की तरक्की हो या गिरावट, उसमें उनका भी हाथ है। और यही एक सफल, एक स्वस्थ परिवार की पहचान है, जहां अच्छी आदतें, सीखने और सिखाने का माहौल हो।
तो अगर हम सार निकालें, तो वंदनीय माताजी के अनुसार परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का एक समूह नहीं है।
नहीं,
बल्कि अगर हम सचेत प्रयास करें तो ये चरित्र निर्माण, अनुशासन और अच्छे गुणों को सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने, और ये विचार हमें आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, सामाजिक ढांचे बदल रहे हैं, तो क्या ऐसे में परिवार के अंदर इन पारंपरिक स्वस्थ मूल्यों और आदतों को स्थापित करना और बनाए रखना, क्या ये वाकई संभव है? और अगर हाँ, तो इस रास्ते में वो कौन सी व्यावहारिक चुनौतियां हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, जिन पर आज के परिवारों को शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है? ये एक अहम सवाल है।